आप सभी मिलकर के एक बार मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे इस पवित्र आर्य समाज के प्रधान आदरणीय सरदेव श्री देव महाजन जी और इसी आर्य समाज के प्रतिष्ठित हमारे वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय श्री शेखर जी, समवेत भद्र पुरुषों, श्रद्धेया पूजा मातृशक्ति और अभी अभी आप सबको संबोधित कर रहे इसी समाज के पंडित पंडित सूर्य नारायण जी, देखिए मैं अपनी बात आदरणीय सरदेव श्री रामचंद्र जी महाजन को याद करते हुए आरंभ करना चाह रहा हूं। कल मैं दोपहर के समय में अचानक यहां मेरा आना हुआ और आया तो पंडित सूर्य नारायण जी से भेंट हुई और इन्होंने मेरी व्यवस्था आपके अतिथि भवन में कर दी और भोजन के बाद मैंने कहा कि आपकी लाइब्रेरी में देखना चाह रहा हूं, तो लाइब्रेरी खुल गई और उस लाइब्रेरी में मैं जब वेद विभाग की ओर गया तो आपकी अलमारियों में जो वेद और आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ आदि जो पुस्तकें रखी हुई है तो उनमें मुझे एक पुस्तक मिली, आदरणीय हमारे इस समाज के संस्थापकों में से रहे, हमारे आर्य समाज के उच्च कोटि के विद्वान नेता रहे श्री रामचंद्र जी महाजन, उनकी एक पुस्तक मुझे मिली, प्रार्थना अमृत। तो मेरा मन हुआ कि हमारे पूर्वज किस प्रकार की भावना रखते थे, क्या उनका उद्देश्य होता था, तो मैंने इस भाव को लेकर के उस पुस्तक को निकाला और पढ़ना जब मैंने आरंभ किया तो उन्होंने अपनी पुस्तक जो आरंभ की है, आप सबको भी मैं ये बात कहना चाहूंगा इस श्रावणी उपाकर्म के इस अवसर पर कि आप स्वाध्याय में अपनी प्रवृत्ति बनाएं। हमारे बड़े हमारे पूर्वज किस प्रकार की प्रवृत्ति स्वाध्याय के प्रति रखते थे, कैसा उनका स्वभाव था, कैसा उनका त्याग और तप था, कैसी उनकी साधना थी और कैसी कैसी प्रार्थना और कैसे शब्दों का संयोजन वो करते थे, वो लिखते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को परम कारुणिक भगवान से कुछ मांगने के लिए अपना कुछ समर्पण पहले करना चाहिए, अपनी कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। उन्हीं के वाक्यों को मैंने अपने इस कागज में उद्धृत किया। वो लिखते हैं कि हे व्रतपति प्रभो, हम व्रत लेते हैं कि आज समस्त दिन में कोई कुत्सित व्यवहार जिससे अपनी या अन्यों की हानि हो नहीं करेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मान्य महाजन जी लिखते हैं कि हे व्रतों के स्वामी, हे प्रभो, आज हम ये व्रत लेते हैं कि पूरे दिन में कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जिससे कि अपने और अन्यों की कोई हानि होती हो। फिर आगे लिखते हैं, प्रत्येक काम धर्म अधर्म का विचार कर इस प्रकार करेंगे जिससे वह हमारे और अन्यों के लिए भी कल्याणकारक हो, यथा संभव ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे और धर्म पूर्वक धन का संचय करेंगे, अपने परिवार के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों तथा दूसरों से भी ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे वह प्रेम प्रीति और संसार में सुख की मात्रा बढ़ाने वाला हो। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये आदरणीय श्री महाजन जी के जो अपनी पुस्तक के 11वें पृष्ठ पर उन्होंने आरंभ करते हुए पहले भूमिका आदि और सम्मतियां हैं पुस्तक के ऊपर। तो जब पुस्तक वो अपनी आरंभ करते हैं प्रार्थना अमृत, तो सबसे पहली पंक्तियां ये हैं, भद्र पुरुषों यदि व्यक्ति इन बातों पे विचार कर लेवे और ऐसी ऐसी प्रार्थना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाए तो किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख दर्द और क्लेश नहीं हो सकता। हम प्रातःकाल उठते हैं, मंत्र बोलते हैं प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवा महे प्रातर जितम भगम उग्रम प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रात सोमम उतरुद्रम भुवे। यहां से हम आरंभ करते हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु देव तू अग्नि स्वरूप है, जान का देने हारा है, और जो अच्छे इंसान हैं, जो पुण्यात्मा हैं, उनको पारितोषिक और उनको उत्साह देने वाला है, उनको बल और वीर्य का देने वाला है, और जो निकम्मे हैं और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं, उनके लिए तू रुद्र रूप होकर के उनको तू रुलाने वाला दंड देने वाला भी है। ये प्रार्थना हम करते हैं और उसी प्रभु से कहते हैं हम कि तू ही धन और ऐश्वर्यों का देने वाला है, आपकी बिना कृपा के मैं कोई धन ऐश्वर्य नहीं उपार्जित कर सकता, मैं विद्या नहीं पढ़ सकता, मैं धन नहीं कमा सकता और मैं जीवन के अंदर यशस्वी नहीं हो सकता। यहां इस वाक्य से, इस मंत्र से व्यक्ति अपनी दिनचर्या आरंभ करता है और सायंकाल सोते समय फिर क्या बोलता है मंत्र, आप सबको मंत्र याद होंगे, आप में से बहुत भाई इस समय जो बैठे हुए 60-70, मैं समझता हूं 50 व्यक्तियों को तो मंत्र याद ही होगा, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तद उसुप्तस्य तथै वैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भद्र पुरुषो, हम सब का जो आत्मा है वो ज्ञान का भंडार है, उस शक्तियों का पुंज है, किसी प्रकार की परमात्मा ने कोई कमी नहीं दी, और आप जानते हैं आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे ऊपर अनेक कुचित भाव आ जाते हैं, कुचित संस्कार आ जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अभी आपने ये अग्निहोत्र किया, हवन किया, यहां तो अमेरिका में चूल्हा नहीं जलता, परंतु भारत से आप सब लोग संबंधित हैं, आप जानते हैं माताएं चूल्हा जलाती हैं, हवन करने वाले यज्ञ करने वाले अग्निहोत्र हवन कुंड में अग्नि जलाते हैं, और वो अग्नि धीरे धीरे जब हवन पूरा हो जाता है या चूल्हे का कार्य हमारा पूरा हो जाता है, माताएं खाना पका लेती हैं, तो वो अग्नि धीरे धीरे शांत होती चली जाती है, और वो जब अग्नि शांत होती चली जाती है तो उसके ऊपर राख की पड़त आ जाती है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना, अग्नि में ईंधन डालते रहेंगे अग्नि धधकती रहेगी, अग्नि में आहुतियां डालते रहेंगे तो अग्नि हवन की जलती रहेगी, और जब वो क्रम बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि अग्नि के ऊपर राख की पड़त आती चली जाएगी और अग्नि नीचे दबती चली जाएगी। आप में से बहुत से भाई बहन जब भारत जाते हैं तो देखते होंगे बड़े बड़े हवन वहां होते हैं, और बड़े बड़े कुंडों में जब वो अग्नि जलाई जाती है और आहुतियां दी जाती हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जब आहुतियां पड़ती हैं चारों वेदों के पारायण से और अग्नि गायत्री और विश्वानी देवारी मंत्रों से, तो उसके बाद जब अग्नि बंद हो जाती है, आहुतियों क्रम बंद हो जाता है, व्याख्यान प्रवचन भजन चलते हैं, और फिर सायंकाल फिर जब अग्नि यज्ञ शुरू करना होता है तो क्या देखते हैं, कहते हैं कि अग्नाधान करने की जरूरत नहीं, अग्नि नीचे जो दबी है उसको क्रेद करके उस राख को हटा करके इस अग्नि को उद्बुद्ध कर लो, और उसी अग्नि को उद्बुद्ध करके अपना यज्ञ आरंभ करता। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का आत्मा ज्ञान और विज्ञान का भंडार है, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अभ्यास को बनाए रखें, हम अपने हृदय की अग्नि को जला करके रखें। अभी आप सुन रहे थे कि कल हमारा श्रावणी उपाकर्म होगा। श्रावणी शब्द का अर्थ भी आपने जाना समझा, श्रवणात् श्रावणी अर्थात सुना जाने के कारण से इसको श्रावण पूर्णिमा को श्रावणी कहा जाता है। क्या सुना जाता है? वेद मंत्र सुने जाते हैं, वेद मंत्रों के अर्थ सुने जाते हैं, विद्वानों के व्याख्यान सुने जाते हैं। और इसके साथ साथ श्रवण शब्द का अर्थ यह भी होता है जो श्रवित होता है। देखो अब यह वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का भारत में तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप टेलीविजन पर, अखबारों में, आप सूचनाओं में, आप माध्यम से आप जानते रहते हैं, राजस्थान जैसे इलाके में बाढ़ आ रही है। क्यों? पानी स्रवित हो रहा है। ये बाढ़ श्रावण में ही आती है, वर्षा ऋतु में ही आती है जब पानी स्रवित होता है। और श्रावणी एक ऐसा पर्व है जो कि भाद्रपद और श्रावण के दोनों महीनों के बीच में आती, श्रावण की पूर्णिमा होती, उससे अगले दिन भाद्रपद आरंभ होता, तो युवा अवस्था पर वर्षा ऋतु होती है और उस बीच के दिन को क्या कहते हैं? श्रावणी कहते हैं। अर्थात पानी खूब स्रवित होता है, नंबर एक। और दूसरा कि क्योंकि आवागमन के साधन कम हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, और प्राचीन काल में तो ये स्थिति थी कि चार चार महीने का चातुर्मास्य उपदेशक विद्वान साधु संत महात्मा किया करते थे और एक स्थान पर बैठ करके वेद की चर्चा, वेद की कथा, वेद का श्रवण और श्रावण किया करते थे लोग, इसलिए उसको क्या कहा? श्रावणी कहा। आपने अभी फोटो देखा जब पंडित जी व्याख्यान दे रहे थे तो ये जो पवित्र हाथ में लेकर के कुछ ब्रह्मचारी, कुछ पंडित, कुछ व्यक्ति वो जनेऊ धारण कर रहे हैं, अर्थात इस अवसर पर जनेऊ जो पुराने होते उनको बदलते हैं और नए जनेऊ को धारण करते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि पुराना जनेऊ जब आप बदलें तो ऊपर से कभी न निकालें। उस जनेऊ को बदलते समय नया जनेऊ पहने और पुराने जनेऊ को नीचे से उतारे। आर्यों का जनेऊ कभी ऊपर से नहीं उतरा करता। कहते हैं आर्यों की गर्दन कट सकती है पर झुक नहीं सकती, जनेऊ नीचे से उतरता, पहले ऊपर नया पहनते हैं। और दूसरा, जिनका ये जो पवित्र नहीं हुआ, पुराना जनेऊ है ही नहीं, नया लिया है, तो वो नया नए व्रत के साथ जनेऊ लेते हैं। और मध्य काल में जब ये हो गया कि पूरे साल भर लोग जनेऊ नहीं रखते थे, बीच के काल में कि कुछ समय के लिए व्रत लेते थे, तो क्या करते थे? श्रावण मास की पूर्णिमासी से लेकर के, श्रावणी से लेकर और माघ मास की अमावस्या तक, ये हमारी सनातनी परंपरा में, आर्य धर्म में, आर्य परंपरा में नहीं ये बात, तो माघ मास की अमावस्या तक जनेऊ धारण करके वो वेद पाठ करते थे। अर्थात वेद पढ़ने का अधिकार तब मिलता था जब वो जनेऊ संस्कार करवा लेता था, ये जो पवित्र ले लेता था। तो इस प्रकार से अभी जैसे मंत्र पढ़ा, संवत्सरम सशयानः ब्राह्मणः व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रमण्डुका अवादिसुः, इस मंत्र से अगला मंत्र, इस मंत्र की व्याख्या कर चुके पंडित जी। अगला ही मंत्र है उपप्रवद मंडुकी वर्षमावद तादुरी मध्य हृदयस्य प्लवस्व विग्रीह चतुर पद। कितना सुंदर मंत्र है। भद्र पुरुषों, आप यदा कदा स्वाध्याय आप करते होंगे, आपके मन में विचार आते होंगे, संस्कार विधि जिसमें ये जो संस्कार का विधान है, संस्कार की पूरी विधि लिखी है, फिर उससे अगला ही संस्कार वेदारंभ संस्कार की विधि उसमें लिखी हुई पूर्णतः, वहां पर एक मंत्र आता है मम व्रते ते हृदयम दधामी। पहले ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा करता है, जनेऊ लेने वाला प्रतिज्ञा करता है, अपने आचार्य को, अपने गुरु को आश्वासन दिलाता देता है कि मेरा व्रत आपके व्रत के अनुकूल है, मेरा हृदय आपके हृदय के अनुकूल है, मेरा मन आपके मन के अनुकूल है। तो क्या है मंत्र? मम व्रते ते हृदयम दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा चित्त आपके चित्त के अनुकूल है। मम वाचम एक मना जुषस्व, और हे आचार्य परवार, हे गुरुदेव, मेरी वाणी को आप बड़े ध्यान पूर्वक एकाग्र मन से आप सुनना, जो मेरी शंकाएं हैं उनका आप समाधान करना और मुझे जान से आप्लावित करना। ये प्रतिज्ञा किसने की? जनेऊ धारण करने वाले ब्रह्मचारी ने की, जनेऊ धारण करने वाले किसी सदघर गृहस्थ ने की, जिस किसी भी व्यक्ति ने संकल्प लिया वेद पढ़ने का उसने ये प्रतिज्ञा की। तो फिर दोबारा इस मंत्र को फिर आचार्य पढ़ता है, संस्कार विधि उठा करके देखना उसमें लिखा क्या पढ़ा कि मम व्रतेते हृदयम दधामी। फिर आचार्य कहता है कि हे शिष्य, हे सौम्य, मेरा व्रत भी तेरे व्रत के अनुकूल है। तू जैसा जानना चाहेगा, जैसा पूछना चाहेगा, जैसा तू मेरे से पूछेगा उसका उत्तर मैं विधिवत तेरे को देता रहूंगा। भद्र पुरुषों, ये मंत्र संस्कार विधि में तीन स्थानों पर आता है। एक तो नामक इसमें ये जोपवित संस्कार में, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, दूसरा वेदारंभ संस्कार में, और तीसरा गृहस्थ संस्कार में, विवाह संस्कार में इस मंत्र का पाठ किया गया। पर देवता बदल जाता है, मंत्र का विषय बदल जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में यज्ञोपवीत और वेदारंभ में इसका देवता रहता है बृहस्पति, बृहताम पति, जो सबका मालिक, जान का देने वाला है। और गृहस्थ प्रकरण में जहां विवाह संस्कार में मंत्र पढ़ा जाता है, पति पत्नी एक दूसरे के हृदय पर हाथ धर के जब मंत्र को पढ़ते हैं तो उस समय उसका देवता है प्रजापति, अर्थात प्रजाओं का मालिक, प्रजाओं का देने वाला। भद्र पुरुषों, आपसे कोई पूछे कि विवाह संस्कार क्यों किया जाता है, ऋषि दयान से यह बात पूछी गई तो ऋषि लिखते हैं कि इहलौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए गृहस्थ आश्रम किया जाता है। ये शब्द ऋषि दयानंद के हैं संस्कार विधि में, कि इस संसार में रहते हुए हम इस लोक की उन्नति के साथ साथ में परलोक की उन्नति का रास्ता प्रशस्त करें। ये इस मंत्र का इसका भाव है। तो मैं आपको कहना चाहता है कि गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम क्यों किया जाता है, कि इस लोक की परलोक की उन्नति के साथ साथ में कहते उत्तम संतानों की प्राप्ति के लिए, कि वहां प्रजा का पति, प्रजा का देने वाला रक्षक कौन है, परमात्मा है। तो वहां परमात्मा को प्रजापति के नाम से याद किया विवाह संस्कार में मंत्र के अंदर, और वेदारंभ और यज्ञोपवीत में बृहस्पति के नाम से देवता के रूप में उसको याद किया कि वो सबका जो मालिक है, जान का देने वाला है। मेरी माता और भाई और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। श्रावणी का संबंध जैसे वेद से सब जानते हैं, मानते हैं, पर हम वेद पढ़ते नहीं। पढ़ते तो थोड़े बहुत दिन पढ़ते हैं, और कई भाई तो नाम नाम सुनते हैं। बहुत तो दुनिया तो इतनी बड़ी है, इस दुनिया में 4 अरब की जो दुनिया है, इसमें कितने अरब तो नहीं, आप करोड़ आदमी कह सकते जिनको वेदों का नाम सुनने को मिला होगा, और देखने के लिए तो बहुत कम व्यक्ति होंगे दुनिया में जिन्होंने वेद नहीं देखे। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक व्यक्ति को इस बात का पता न लगे कि इस काम के करने से ये लाभ होगा, तब तक उस काम में प्रवृत्त नहीं होता, उस कार्य को व्यक्ति नहीं करता। आप में से बहुत से भाई ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं, और व्यापार करते करते भी कई बार क्या होता है, कई बार कुछ व्यापार छोड़ने पड़ते हैं और कुछ नए व्यापार अपनाने पड़ते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपने हिसाब के हिसाब से, अपने आय व्यय के हिसाब से, किस चीज में मुनाफा होगा, किस चीज में कमाई होगी, बाजार में वही चीज आएगी और उसी का व्यापार व्यक्ति करेगा। तो जब हमें वेद पढ़ने के प्रति हमारी ये आस्था जग जाएगी और हमें पता लगेगा कि वेद पढ़ने का ये लाभ है, तो वेद पढ़ने में प्रवृत्त होंगे। परंतु जब तक पता ही नहीं कि हमें वेद पढ़ने का लाभ क्या है, उसकी क्या कारण है, वेद पढ़ना क्या होना चाहिए, तो हम वेद नहीं पढ़ते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, महर्षि पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, और आज दुनिया के सब भाषा शास्त्री अपने दांतों तले उंगली दबा करके इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितना शब्दों का व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण जितना बड़ा और विशाल बना, सारे संसार के शब्दों को उसने भाषा में व्याकरण में बांध के रख दिया, ऐसा दुनिया में और कोई व्याकरण नहीं है। तो वो महर्षि पाणिनि लिखते हैं वेद शब्द का अर्थ। ये आपको लाभ की, आपके लिए जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं। क्या है वेद शब्द? चार धातुओं से बनाया। पहला धातु है विद ज्ञाने। धातु क्या है? विद ज्ञाने। और दूसरा धातु क्या है? विद लिरी लाभे। भाई धातु शब्द को आप समझने की कोशिश करें, धातु होता है शब्द का मूल। जैसे भवती, पचती, पठती, क्रीडती, लिखती आदि जो शब्द है ना, अब जैसे कोई कहे पठती, तो पठती में क्या मूल शब्द है? तो पठ धातु कह देंगे आप। लिखती में क्या धातु है? तो आप कह देंगे कि लिखती में लिख धातु है। और क्रीडती में क्या धातु है? क्रीड धातु है। तो ऐसे ही जो मूल जो शब्द है उसको धातु कहते हैं, जिससे शब्द बनता है। आगे प्रत्यय आदि लगाने पर भाषा के नियम है, वो शब्द सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे महर्षि पाणिनि ने चार धातुएं, एक तो धातु है विद, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात तुम वेद पढ़ोगे तो तुम ज्ञानी बनोगे। क्यों? वेद ज्ञान का भंडार है, वेद ज्ञान का खजाना है, वेद ज्ञान का आगार है। दूसरी बात कही कि विद लिरी लाभे, अर्थात वेद पढ़ोगे तो क्या होगा? जहां ज्ञानी बनोगे तो तुम लाभ में भी रहोगे, क्योंकि बिना ज्ञान के लाभ हो ही नहीं सकता। आदमी ज्ञान पूर्वक किसी कार्य को करेगा तभी तो लाभान्वित होगा, और ज्ञान है ही नहीं और किए जा रहा है तो पता नहीं किस दिशा में आदमी दौड़ जाए, निकल जाए और कितना नुकसान उठा ले। तो कहते हैं कि पहला काम है वेद पढ़ने का, अर्थात वो ज्ञानी हो जाता है। दूसरा उसका लाभ है कि ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा, काम करेगा तो लाभान्वित होगा। तो क्या हुआ? वेद पढ़ने से व्यक्ति लाभान्वित होता है, वेद पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी बनता है। और तीसरा धातु है, क्या धातु है? विद सत्तायाम, अर्थात तुम वेद पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन का आधार मजबूत बनेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, और आचरण करता है तो उसको क्या होता है? उसके जीवन का आधार मजबूत बन जाता है, और वो जो चाहे दुनिया के अंदर वो कर सकता है। मेरी माता और भाई और बहनों, आप जानते हैं हमारी संस्कृति में दो महापुरुष ऐसे हुए, एक शंकर और एक दयानंद। महाभारत के बाद पहले तो कितने ही ऋषि हुए, अष्टाशीति सहस्राणी ऋषि नाम ऊर्ध्वरेतसाम, 88,000 ऋषि इस भारत भूमि में हुए जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर वेद विद्या का प्रचार प्रसार किया। परंतु महाभारत युद्ध में जो नुकसान हो गया, जो हानि हो गई, जिसमें विद्वान धनाढ्य और ज्ञान विज्ञान खत्म हो गया, तो उसके हजारों साल के बाद में दो महापुरुष आए। आज से 2200 वर्ष पहले आद्य शंकराचार्य आए, और 150-200 वर्ष पहले ऋषि दयानंद आए। शंकर ने जैन और बौद्धों के साथ मुकाबला किया, वो जो नास्तिक संप्रदाय थे उनका खंडन करते हुए वैदिक मत की स्थापना की, वैदिक धर्म की स्थापना की। और दयानंद ने दुनिया भर के पाखंडों का खंडन करके सच्चा वेद क्या, वेद मत क्या है, वेद की मान्यताएं क्या है, इनकी स्थापना की। तो ये दो महापुरुष महाभारत के बाद ऐसे हैं जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। तो मैं आपको कह रहा था कि इन दो महापुरुषों के आधार में, मूल में क्या था? वेद था, और जीवन का आचरण था, और आचरण के साथ में जीवन की साधना थी, और उन्होंने जो जीवन में करना चाहा सो किया। एक तरफ मेरा ऋषि जोधपुर जाता है और लोग कहते हैं स्वामी जी आप वहां न जाएं, तो जोधपुर के लोग बड़े कर्कश हैं, बड़े कठोर हृदय के हैं, आपके जीवन को खतरा हो सकता है। पर ऋषि दयानंद कहता है कि देखो, मुझे तोप के सामने खड़ा करके यदि पूछेगा कोई, कहेगा कि तुम सत्य कहोगे क्या सत्य, तब भी मैं सत्य कहूंगा, मैं असत्य का पक्ष नहीं लूंगा। ये जीवन की मजबूती थी, ये जीवन का आधार था उनका। और कब, जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति जितना ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाला होता है, वो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी बन जाता है, वो व्यक्ति जीवन में अपने आधार को मजबूत कर लेता है। तो कहते हैं कि वेद पढ़ने से जीवन का आधार मजबूत बनता है, जीवन की सत्ता मजबूत बनती है। चौथी बात, चौथा धातु विद विचारणे, क्या वेद पढ़ोगे तो विचार शक्ति आएगी। मेरी माताओं, भाई और बहनों, आप रोज देखते हो समाज के अंदर बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, बड़े बड़े वैज्ञानिक, परंतु जीवन में साधना नहीं है, तप नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा का पता नहीं है, तो क्या है, थोड़ा सा भी जब धक्का लगता है तो क्या हो जाता है, फिर वो व्यक्ति आत्महत्या के लिए उतारू हो जाते हैं और आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन को यदि अच्छा बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, जीवन को जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें ये पवित्र चोला दिया है कि मुक्ति तक हम पहुंचे, ये उद्देश्य पूरा करना है, तो हमें वेद पढ़ करके वेद के अनुसार आचरण करने का स्वभाव बनाना चाहिए और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए जैसे हमारे बड़ों ने प्रार्थनाएं की, हे व्रतपति, हे व्रतों के स्वामी, हे भगवान, आप ज्ञान अग्नि कुंड है, आप ज्ञान के देने वाले हैं, आप ही ज्ञान देते हैं, आप ही अंधन देते हैं, आप ही ऐश्वर्य देते हैं और आप ही बल और पराक्रम हमें देते हैं और दुष्ट और निकम्मे लोगों से आप ही हमारी रक्षा करते हैं, हम आपको ही नमस्ते करते हैं। और ये प्रार्थना करके हम संध्या उपासना मंत्रों का पाठ करें तो आनंद आएगा। और इसी प्रकार सोते समय यह जागृत हो दूरम उदयति, जो जगते हुए जो मेरा मन दूर दूर दौड़ता है, तो कहते हैं कि वो मेरा मन शुभ संकल्पों वाला बन करके न केंद्रित होकर के, और मैं सो जाऊं परब्रह्म के गोद में और आराम से रहूं। तो ये तभी होगा जब हम आचरण और व्यवहार हम अच्छा करेंगे। तो इन शब्दों के साथ आपने टाइम दिया और मैंने अपने शब्दों में अपने ढंग से अपनी बातें कही, आपने ध्यान पूर्वक सुना, आप सबका साधुवाद धन्यवाद मैं करता हूं। और आपका आर्य समाज हमारे गुरुकुलों का सहयोग करता है, मैं आर्य समाज का भी साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों के साथ पुनः साधुवाद, ओम शांति।